दौला पुस्तक तीसरी लेक्चर नंबर 10। ओम नमः सिद्धेश्य, ओम नमः सिद्धेश्य, ओम नमः सिद्धेश्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वच्छायाणम्, नमो लोए सवसाहूणम्। केवलनाणुजोय्य छद्दवमणिच्यं पवायी, नमी ऊणजिणम्भणिमो दौवणियोगं गणियसारम्। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर रची हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। इस षटखंडागम का जो प्रथम खंड है जीव स्थान, उसमें द्रव्य प्रमाणानुगम की बात यहाँ चलेगी। इस तीसरी पुस्तक में हम आए हैं पृष्ठ संख्या 44 पर, 44। यहाँ भी कुछ गणित के बारे में, यहाँ हमारे कौन से वर्ग को क्या भाग देने पर क्या आता है आदि आदि बातें यहाँ चलेगी। पेज नंबर 43 पर हमने देखा था, शंका पूछी थी कि संपूर्ण जीव राशि का, संपूर्ण जीव राशि के उपरिम वर्ग में भाग देने पर कौन सी संख्या के, किसी भी संख्या के वर्ग को, मान लेते क, क वर्ग को क से भाग देंगे तो क्या होगा, तो क आएगा, तो संपूर्ण जीव राशि उसका उत्तर आएगा, क्योंकि उस संख्या गुणा संख्या वो राशि आई थी, उसको एक संख्या से भाग देंगे तो संख्या ही आएगी। उदाहरण बीज गणित से उन्होंने बताया था, जीव राशि को क मानेंगे तो क वर्ग डिवाइडेड बाय क इज इक्वल टू क। अब फिर शंका पूछते हैं, ये कल पढ़ा था, फिर दोबारा हम पढ़ते हैं। दूसरा भाग अधिक संपूर्ण जीव राशि का, दूसरा भाग अधिक यानी आधा मिला दो, यानी डेढ़ गुना, यानी दूसरा भाग अधिक संपूर्ण जीव राशि का, संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर कौन सी राशि आती है, यानी क वर्ग को क प्लस क आधा क प्लस आधा यानी डेढ़ क, उससे भाग देने पर क्या आता है, तो कहते तीसरा भागहीन संपूर्ण जीव राशि आती है, यानी तीन द्वितीयांश क से भाग देने पर दो तृतीयांश क आते हैं, दो तृतीयांश का अर्थ तीसरा भागहीन। अंकगणित से उसी बात को उन्होंने समझाया है कि हम 16 जो है हमारी जीव राशि है, तो 16 के वर्ग को यानी 256 को, 16 का दूसरा भाग 8 है, यानी द्वितीय भाग अधिक 16 यानी 8 अधिक 16 24 होते हैं, तो 24 का 256 में भाग देने पर 10.2 यानी 32 आते हैं, जो जीव राशि 16 का तीसरा भाग हीन है, क्योंकि 10.2 में एक तृतीयांश अधिक, एक तृतीयांश मिला देगी कि 11 हो जाएगी और 5। फिर शंकाकार पूछ रहे, दूसरा भाग अधिक संपूर्ण जीव राशि का, संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर तीसरा भाग हीन जीव राशि किस कारण से आती है, ये तो हमने करके जो दिखाया है, तो क्यों आता है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ अलग पद्धति से उसको बता रहे। देखो उसका समाधान, संपूर्ण जीव राशि के वर्ग रूप क्षेत्र के पूर्व और पश्चिम के विस्तार से तीन खंड करके, ये संपूर्ण जीव राशि हमने कितनी देखी थी, अ और ब देखी थी ना, तो कहते उसके तीन खंड करना संपूर्ण क्षेत्र के, और उनमें से एक खंड ग्रहण करके पहले पूरा पढ़ेंगे फिर आपको समझाऊंगे, उसके भी दो खंड करके संधित अर्थात प्रसारित कर देने पर अथवा संपूर्ण जीव राशि का दूसरा भाग रूप विस्तार करके भाग आयाम क्षेत्र होता है, लंबा किया, चौरस था उसको लंबा कर दिया, इसको अधिक विरलन राशि के प्रत्येक एक के ऊपर देय रूप से देने पर प्रत्येक एक के प्रति तीसरा भागहीन संपूर्ण जीव राशि प्राप्त होती है। फिर से देखते हैं, ये बाजू में उन्होंने चित्र बनाया था। तो संपूर्ण जीव राशि का वर्ग रूप क्षेत्र, क्योंकि जीव राशि के वर्ग को हम भाग दे रहे हैं, तो वर्ग रूप क्षेत्र कैसा लेना है, जो हम 16 की बात करेंगे, 16 में हम देखेंगे, यानी हम एक चौरस आकार निकालेंगे, जैसे हम घर हमारा हॉल है मान लेते 16x16 का होगा, ये 16 ये 16, तो ये वर्ग हुआ उसका, 16x16 उसके वर्ग हो गए। अब उसमें से क्या करना है, संपूर्ण जीव, फिर समाधान पढ़ेंगे हम, संपूर्ण जीव राशि के वर्ग रूप क्षेत्र के पूर्व और पश्चिम के विस्तार से तीन खंड करके, ये उसके हमने तीन खंड कर दिए, ख्याल में आई बात, तीन खंड करके और उनमें से एक खंड ग्रहण करके, यानी इसमें क्या किया, ये तीन खंड करके उसमें से भी एक खंड ग्रहण करके, अब ये खंड हमने यहाँ से निकाला, ये वंथर निकाला ना इसमें, उसके भी दो खंड करके, यानी अभी ये हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, समझाने के लिए हम 15 को ले लेते हैं ना, यानी 5 5 5 और 5 के ऊपर वंथर आ जाएगा 16 को, 5 1/3 5 1/3 5 1/3 और यहाँ पर 16 है, इसके भी ये पूरा निकाला ना यहाँ से एक खंड करके, अभी उसके दो करना, यानी 16 निकाले हमने, 16 की ही ये वैल्यू 5 पूर्णांक 1/3 है, और उसके ऐसे भी दो भाग किए, यानी 5 पूर्णांक 1/3 यहाँ एक भाग रखा और ऐसा 8 हो जाएगा, ये तो 5 पूर्णांक 1/3 यहाँ जोड़ दिया और ये दूसरा भाग इधर जोड़ा, यानी ये 5 पूर्णांक 1/3 हुआ, ये 5 पूर्णांक 1/3 हुआ, ये 8 हुआ, ये 8 हुआ, अब ये 16 था और ये 8 हो गया, उतना का ही उतना हो गया ना, हाँ, तब ये कैसे हो गया, ये 10 पूर्णांक 2/3 हुआ और यहाँ पर 1.5 गुना हो गया, यानी इसका इसका गुणा करेंगे तो वही राशि आएगी
जो पहले देखी वाला,
हाँ, जो 16x16 वही राशि आती है, यानी पहले हमने क्या किया था, 256 को क से यानी 16 से भाग दिया था, यानी जो 16 से भाग दिया ने, ये हमें 16x16 पूरा एरिया आता था, उसको एक बाजू से भाग देते हैं तो दूसरी बाजू आती है, 256 को हमने 16 से भाग दिया तो दूसरी बाजू भी 16 आई थी, अभी हमने क्षेत्र उतना ही रखा और उसका ऐसा लंबा आयत कर दिया, तो एक बाजू कितनी हुई, 16+8 यानी वो तो आधे भाग से अधिक हो गई, तो ये बाजू हीन हो गई, अब उसी क्योंकि इसका क्षेत्र तो वही रखा है हमने, कुछ हीन अधिक नहीं किया, तो ये यहाँ 24 आया, तो 256 को 24 से भाग देंगे तो यहाँ 5 पूर्णांक 1/3 + 5 पूर्णांक 1/3 10 पूर्णांक 2/3 आ गए, यानी कितना हमने इसका, ये 2/3 हो गया ना, ये 1/3 से हीन हो गया, ख्याल में आती है, यहाँ 1/3 से, यहाँ यहाँ हमने आधे से हीन इसमें जोड़कर भाग दिया, तो इसमें से वंथर से हीन उत्तर आया, पूरा उत्तर वंथर से हीन सोलह आया। यानी ये आप इसकी वैल्यू यहाँ डालेंगे तो ख्याल में आ जाएगा। यानी वो तो एक ही स्क्वायर में उन्होंने बताया है, परंतु उसको निकाल कर वहां रखना है। तो पहला स्क्वायर हम लिखते हैं 16x16 वाला, और उसके हमने तीन भाग किए, पांच पूर्णांक के एक तृतीयांश वाले। ये पेज नंबर कल का है, वो 44, कल आप नहीं थे ना, 44 वो हम समझाएंगे क्या बात हो रही है। देखो अभी हमने एक स्क्वायर ऐसा निकालो, यहाँ पूछा गया था, पहले पूछा कि पूरे जीव राशि के वर्ग को जीव राशि का भाग देने पर क्या संख्या आएगी। जैसे जीव राशि के बदले हम क मानते हैं, तो क वर्ग को क से भाग देंगे तो क्या आएगा, क आएगा, क वर्ग डिवाइडेड बाय क इज इक्वल टू क। अंकगणित से देखेंगे तो जीव राशि ने 16, 16 का वर्ग 256 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 16। ये तो आसान है। प्रश्न पूछा गया था कि जो जीव राशि का वर्ग है क वर्ग को, क में उसका आधा मिलाकर अगर भाग देंगे तो क्या आएगा, यानी क प्लस क का आधा, क प्लस क द्वितीयांश, तो क्या आएगा। तो उत्तर आया था वन थर्ड से हीन क आएगा, यानी क माइनस वन थर्ड आएगा, यानी टू थर्ड क आएगा। पर उनकी भाषा कैसे, आधे से अधिक क से भाग देंगे तो तीसरे से हीन क आएगा। आगे जाके बोलेंगे तीसरे से अधिक क से भाग देंगे तो चौथे से हीन क आएगा। अब ये कैसे आया उसको यहाँ समझा रहे हैं हम। ऐसे तो डायरेक्ट इसकी अगर वैल्यू करते तो ये तो क प्लस क द्वितीयांश तीन द्वितीयांश क होता है, क्योंकि इसके नीचे कुछ छेद नहीं है, तो इसको दो और नीचे दो करेंगे, दो क और एक क, तीन क भागीले दो होता है, यानी क स्क्वायर को, यानी ऊपर क्या है क इंटू क और नीचे क्या है तीन द्वितीयांश क। एक का निकल गया, तीन द्वितीयांश से भाग देना यानी दो तृतीयांश से गुणा करना, ये दो तृतीयांश यानी दो बटे तीन क, ऐसा उत्तर आता है। दो बटे तीन कहो या वन थर्ड से हीन कहो, एक ही बात है। अब इसको उन्होंने क्षेत्र की अपेक्षा बताया, जैसे हमारा हॉल है वैसे समझो, 16x16 का है, हमने एक कपड़ा लिया 16x16 का, अभी उसके तीन भाग किए, 16 के तीन भाग किए तो पांच पूर्णांक एक तृतीयांश एक भाग हुआ, पांच पूर्णांक एक तृतीयांश दूसरा भाग हुआ, पांच पूर्णांक एक तृतीयांश तीसरा भाग हुआ, ये 16 है। अभी हमको क्या करना है, यानी जो स्क्वायर जो कपड़ा है एरिया हमें उतना ही रखना है, इसको इसका गुणा करेंगे यानी क वर्ग, क से क को गुणा करेंगे तो हमकी पूरी एरिया आती है क वर्ग। अब क्या करना है हमको, उन्होंने पता ना उसमें आधा मिला के करना, वो बाद में हम देखेंगे कैसा आया उसको देखते हैं। अब ये वन थर्ड जो है इसका वन थर्ड, ये एरिया इसको आप ऐसा कलर कर सकते हैं, तिरछे लाइन लगा लो, और इसके दो हिस्से किए बीच में, यानी आठ वाला एक आठ वाला एक। अब ये 8x5 पूर्णांक वन थर्ड ये इधर जोड़ दो, क्योंकि ये पांच पूर्णांक एक तृतीयांश है ना, उसके आगे ये आठ को जोड़ दो
और ये दूसरा आठ इधर जोड़ दो, यानी ये कपड़ा यहाँ से निकाल कर हमने वहाँ आगे जोड़ दिया, नीचे का वन थर्ड वाली स्ट्रिप उसके दो हिस्से करके इसके आगे जोड़ दिए। तो अभी हमारी एरिया कैसी हुई, 16 प्लस 8 यहाँ हुए, यानी डेढ़ गुना हुआ ना, क प्लस क का आधा। इस संख्या से 256 यानी एरिया उतनी रही, तो ये बाजू जो है दोनों को मिलकर यानी अभी 256 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 8 24 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो इतनी एरिया आएगी, 5 और 5 10 पूर्णांक 2/3, ये इसका उत्तर आएगा 10 पूर्णांक 2/3, यानी 16 में 5 पूर्णांक 1/3 कम, यानी 1/3 कम, यानी ये हम यहाँ क लिखेंगे, क प्लस क का आधा, इससे अगर हम ये पूरी एरिया हमारी क स्क्वेयर है, इन दोनों भुजाओं का गुणाकार क स्क्वेयर है। अभी हमने नीचे का स्ट्रिप फाड़ कर इधर लगा ली, तो क प्लस क के आधे से एरिया तो उतनी रही, पूरी एरिया कितनी हमारी क स्क्वेयर, तो उसको भाग देंगे क्या आएगा, दूसरी भुजा आ जाएगी, तो दूसरी भुजा कितनी है, तो हमने वो क का वन थर्ड और दूसरा क का वन थर्ड हमने यहाँ जोड़ दिया था, तो क का वन थर्ड और क का वन थर्ड यानी 2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, यानी 1/3 से कम। ये क का 1/3 इधर था, वो हमने यहाँ स्ट्रिप जोड़ दी, तो क के 1/3 से हीन क आया, 1/3 से हीन क आया, यानी 2/3 क आएगा। उत्तर क्या है, उनकी भाषा 1/3 से हीन क, यहाँ आधा क जोड़ देंगे तो यहाँ 1/3 क कम हो जाएगा दूसरी भुजा में। ये एरिया वाइज सम एक क्षेत्र की अपेक्षा उन्होंने ये बीजगणित समझाया, अंकगणित समझाया। हाँ, क्योंकि हम जो स्क्वायर देते किसकी एरिया है, तो एक भुजा से दूसरी भुजा को गुणा करेंगे तो हमको एरिया पूरी आती है, यानी वो वर्ग रूप राशि तो वही रखेंगे। हमने यहाँ क्षेत्र के द्वारा हमने मान लिया कपड़ा है, एक बाजू को है दूसरी बाजू को है, तो क की नीचे की 1/3 स्ट्रिप फाड़ दी और उसके दो हिस्से करके ये आयत बनाया, ये चौकोर था उसको आयत बनाया, एरिया उतनी रही, तो इस बाजू क्या हुआ, क और उसमें क का आधा मिल गया, और इस पूरे भुजा में क्या हुआ, 1/3 कम हो गया। तो क का आधा मिलाकर अगर हम क स्क्वायर को भाग देंगे तो उत्तर आएगा 1/3 से हीन क, यानी 3/3 क से भाग देते तो 2/3 क आते, ये अपनी भाषा में, पर उन्होंने उसको कितना कम कितना अधिक उस भाषा में बताया है। अभी देखो यहाँ बढ़ते हैं 44 पेज पर, यानी आपको अगर लिखना है ना तो इस तरह से लिखो, आप एक स्क्वायर बना दो, क्योंकि अभी ये फोन ऊपर पढ़ने सुनने वालों के लिए मैं फिर बताती हूँ, एक स्क्वायर बना दो, उसके एक बाजू में 16 लिखो, दूसरे बाजू में चौकोन जिसको कहेंगे, दूसरे बाजू में 16 लिखो, फिर आड़े बीच में 1/3 1/3 करके यानी दो लाइन आगे बीच में ड्रॉ करो, जैसे यहाँ 1 2 3 लिखा है साइड में, जो ऐसा बनाओ, वहां तो अ और ब ऐसा लिखा है, तो उसके बदले हम यहाँ लिखेंगे ऐसे अ और ब ऐसे दो भाग के ना, ऐसे एक लाइन बीच में लिखो, और ये एरिया जो हम यहाँ कट करने वाले उसको ऐसे एक स्ट्रिप बना देने तिरछी लाइन से, उसको जरा हमको इंडिकेट करना है। तो ये फिगर बनाओ, दूसरी फिगर और बनाओ भी, क्योंकि ये भी जो हम लाइन वाली स्ट्रिप है यहाँ से निकाल कर आगे जोड़ने वाले हैं, क्योंकि इसकी विड्थ है और ये 1/3 की विड्थ सेम है, तो इसके 16 के आगे ये 8 वाली स्ट्रिप, अभी इसके लिए फिगर दूसरी बनाओ, उसी भी फिगर में बनाते तो हमको लगता है इधर भी है और उधर भी है, वो नहीं चाहिए, इसलिए दूसरे स्ट्रिप अभी दूसरा स्क्वायर ऐसा ही बना दो, उसमें हम क्या दिखाएंगे, ऐसा 16 दिखाएंगे, और ये आठ वाली स्ट्रिप हमने जोड़ दी, तो जो हमने ऐसा तिरछा बनाया था वो जो हमने जोड़ दिया, यहाँ से निकाल कर यहाँ जोड़ दिया। ऐसे दो फिगर आप बना के रखेंगे वहाँ, तो आपको समझने में आसान होगा।
उसी ने किया है,
ठीक है, कोई बात नहीं, उसी ने किया तो अच्छा है, पर वो वहाँ से निकाल कर वहाँ जोड़ दिया है, बस इतनी बात।
एरो बताया,
एरो करके यहाँ गया, हाँ ठीक है। यानी पहले जो चौकोन था, समझ रहे, चौकोर था, अभी वो कैसे आयत हुआ, लंबा हुआ, हाँ यहाँ से वन थर्ड स्ट्रिप काट के आधी करके उसमें जोड़ दी। अब यही फॉर्मूला आगे भी चलेगा, क्योंकि क्षेत्र की अपेक्षा आगे बहुत बार ये ऐसे इधर से काटो उधर लगाओ वगैरह वगैरह बातें आने वाली है। यानी वो 16 और 8 मिलकर अभी एक बाजू 24 हो गई, उससे 256 को भाग देंगे तो वही एरिया तो उतनी रहेगी, ये 10 पूर्णांक 2 तृतीयांश आ जाएगी। देखो ये समाधान अभी मैं फिर पढ़ती हूँ, अभी इसका आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। संपूर्ण जीव राशि के वर्गरूप क्षेत्र के पूर्व और पश्चिम के विस्तार से, यानी आड़ा तीन खंड करके, उनमें से एक खंड ग्रहण करके, वो नीचे तीसरा खंड जो है ना, और ब्लव मिलकर उसके भी दो खंड करना, आधा आधा दो करे करके संधित अर्थात प्रसारित कर देने पर, यानी वो उसमें ऊपर एक और दो नंबर के भागों में उसको वहां जोड़ दिया, अथवा संपूर्ण जीव राशि का दूसरा भाग रूप विस्तार करके भाग आयाम क्षेत्र होता है। यानी वो तो आयाम, यानी वो लंबा, हाँ रेक्टेंगल, लंबा चौकोर होगा। इसको अधिक विरलन राशि के प्रत्येक एक के ऊपर देय रूप से देने पर प्रत्येक एक के प्रति तीसरा भागहीन संपूर्ण जीव राशि प्राप्त होती है। यानी अभी विरलन करके पहले जैसे उन्होंने बताया था, इसके विरलन करके उसके समान खंड करके दे दो, इस तरह से अभी शंकाकार पूछ रहे हैं। तीसरा भाग अधिक, पहले हमने क्या किया था, क वर्ग को क प्लस क द्वितीयांश से भाग दिया था, अब पूछ रहे तीसरा भाग अधिक संपूर्ण जीव राशि का, यानी क प्लस क का वन थर्ड संपूर्ण जीव राशि के उपरिम वर्ग में भाग देने पर क्या आता है, उसका समाधान चौथा भागहीन संपूर्ण जीव राशि आती है। यहाँ पर भी कारण का पहले के समान कथन करना चाहिए, अर्थात संपूर्ण जीव राशि के वर्गरूप क्षेत्र के पूर्व और पश्चिम विस्तार से चार खंड करके, उनमें से एक खंड के तीन खंड करके प्रसारित कर देने पर, अभी समझने के लिए आसान होगा। पहले तो हमारे पास 16x16 का स्क्वायर था, अभी क्या करना, 16x16 का ही स्क्वायर करो, अब इसे हॉरिजॉन्टल चार भाग करो, एक एक की वैल्यू चार चार आएगी। ये चौथा भाग हीन करना है ना उसका उत्तर, तो ये चौथा भाग निकाला, चौथा भाग निकाला तो उसके तीन स्ट्रिप करके उसमें जोड़ देना, वन थर्ड वन थर्ड, यानी वन थर्ड की वैल्यू 5 पूर्णांक 1 तृतीयांश, तो उसके आगे हमने 5 पूर्णांक 1 तृतीयांश / 4 ऐसे तीन पीसेस करके जोड़ दिए। यानी यहाँ तो ओरिजिनल 16 था और उसमें 5 पूर्णांक 1 तृतीयांश आ गए। तो अभी हमने क्या जोड़ा, यहाँ वन थर्ड जोड़ा, क प्लस क का वन थर्ड, और उसको पूरे एरिया को क स्क्वायर को भाग देंगे तो 4 × 12 उसका उत्तर आएगा, यानी चौथे भाग से हीन क, 16 है उसका चौथा भाग हीन हो गया, 4 कम हो गया, 4 कम 16, क्योंकि यहाँ वन थर्ड जोड़ दिया तो यहाँ वन फोर्थ कम हो गया, ख्याल में आई बात? वहाँ यहाँ वन हाफ जोड़ दिया था तो यहाँ वन थर्ड कम हुआ था, यहाँ वन थर्ड जोड़ दिया तो यहाँ वन फोर्थ कम हो गया, चार कम हो गया, ऐसे चलेगा आगे। क्वार्टर कम, वन फोर्थ मैंने कहा, यहाँ वन थर्ड जोड़ा, एक बाजू में वन थर्ड जोड़ा तो दूसरी बाजू वन फोर्थ से कम हो गई, थ्री फोर्थ रह गए यानी वन थर्ड कम हो गए, वन फोर्थ कम हो गए, यहाँ वन थर्ड जोड़ा, यहाँ एक्स्ट्रा वन थर्ड जोड़ा तो यहाँ वन फोर्थ कम हो गया, थ्री फोर्थ रह गया। देखो यही बात यहाँ समाधान में, हम 44 के समाधान में चौथा भाग हीन संपूर्ण जीव राशि आती है, उसका इन्हें तीसरा भाग अधिक संपूर्ण जीव राशि का यानी क प्लस आगे लिखा है, क का तीसरा भाग संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर यानी क स्क्वायर में भाग देने पर क्या आता है, तो चौथा भाग हीन संपूर्ण जीव राशि आती है। यहाँ पर भी कारण का पहले के समान कथन करना चाहिए, अर्थात संपूर्ण जीव राशि के वर्ग रूप क्षेत्र के पूर्व और पश्चिम विस्तार से चार खंड करके और उनमें से एक खंड के तीन खंड करके प्रसारित कर देने पर संपूर्ण जीव राशि का तीसरा भाग रूप विस्तार जानना यानी क में उसका वन थर्ड मिला दिया, अनंतर इन खंडों को अधिक विरलन राशि के प्रत्येक एक के ऊपर दे देने पर चौथा भाग हीन संपूर्ण जीव राशि आ जाती है। देखो एक क स्क्वायर को क प्लस क तृतीयांश से भाग दिया तो तीन चतुर्थांश क आ गए, हमने थ्री फोर्थ क आ गए, चार चार और चार बारह आ गए थे एक बाजू, उसी का अर्थ है क में क का चौथा हिस्सा कम है, थ्री फोर्थ क का अर्थ है क्या है, उसमें वन फोर्थ क कम है। अंक गणित से 16 का तीसरा भाग पांच पूर्णांक एक तृतीयांश है, अतः तृतीय भाग पांच पूर्णांक एक तृतीयांश अधिक 16 21 पूर्णांक एक तृतीयांश आते हैं, उसका 256 में वो मैं हो गया, मैं भाग देने पर 12 आते हैं, जो जीव राशि 16 का चौथा भाग हीन है, 12 संख्या 16 से 4 से कम है, चौथे भाग से हीन है। इसी प्रकार संख्यात्वा भाग अधिक संपूर्ण जीव राशि का संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर क्या आता है, अभी कोई भी संख्या हो सकती है, संख्यात्वा भाग कर दिया उन्होंने, अभी तक हम दूसरा भाग तीसरा भाग चौथा भाग कह रहे, कोई भी संख्यात्वा भाग अधिक संपूर्ण जीव राशि का संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर क्या आता है, उसका समाधान संख्यात्वा भाग हीन संपूर्ण जीव राशि आती है, यानी वो उसको भी संख्यात ही कहेंगे ना, जैसे हमने कहा आधे भाग से अधिक क को क का भाग दिया तो तीसरे भाग से हीन क आया, यानी जितना नंबर होगा उसका एक मिलाकर उतने भाग हीन कर देना है, जैसे हमने देखा था कि वन थर्ड मिलाकर उसका भाग देंगे वन फोर्थ से हीन आता है, ऐसे संख्यात्व भाग अधिक करके भाग देंगे तो संख्यात्व भाग हीन आएगा उसमें, वो संख्या संख्यात में एक का डिफरेंस होगा। देखो फिर से यहाँ पर
एक का डिफरेंस कैसा निकला,
जैसे हम दूसरे भाग से हीन दूसरे भाग से अधिक किया तो तीसरे भाग से हीन आता है, तीसरे भाग से अधिक किया था तो चौथे भाग से हीन उत्तर आया था,
तो संख्या भाग मान लो 25 है तो यहाँ 26 आए।
हाँ देखो उदाहरण से बता रहे हैं यहाँ पर, देखो क स्क्वायर को क प्लस क डिवाइडेड बाय न, न इन्हें वो संख्या के लिए न लिखा, कोई भी संख्या हम ले सकते हैं उसमें, इज इक्वल टू
अपनी भाषा में रूट।
हाँ यहाँ लिखा ना आगे उन्हें संख्या इज इक्वल टू न, तो न डिवाइडेड बाय न प्लस वन इन टू क आया, यानी क में कितना कम है, क का न प्लस वन वा भाग, जैसे हमने क का आधा मिलाया था तो क का तीसरा भाग कम था, क में वन थर्ड मिला के भाग दिया था तो क का चौथा भाग कम था, अब यानी क का नौ न, अभी न के बदले नौवा भी कहे, क का नौवा भाग अगर मिलाकर भाग देते हैं तो क के दसवें भाग से हीन वो संख्या आ जाएगी, है ना। कोई भी यहाँ संख्या लिख लो, न के बदले हम कोई पंद्रह लिखो, तो क में क का पंद्रहवा भाग मिलाकर अगर भाग देते हैं तो उत्तर में क माइनस क का सोलहवा भाग होगा, इस तरह। इसको सॉल्व करके देखते हैं, देखो ये डायरेक्ट उन्होंने बताया इसलिए क्या होता है, यहाँ क्या लिखना है हमको, क स्क्वायर डिवाइडेड बाय क प्लस क डिवाइडेड बाय नौ, बराबर है ना, यही तो ऐसा ही किया ना हमने। अभी इसको सॉल्व करो, नीचे है इसका डिनोमिनेटर नौ है, समझ छेद करना है, तो न क और डिवाइडेड बाय नौ और इस तरह से आ जाएगा, तो नीचे क्या है, न क प्लस क डिवाइडेड बाय नौ, यानी न क प्लस क अभी डिवाइडेड बाय नौ आता है ना, अभी इसको मैं ऐसा कर, अभी डिवाइडेड बाय नौ ऊपर चला जाएगा, भागाकार का भागाकार यहाँ गुणाकार हो गया, अभी इसको सॉल्व करेंगे, न क प्लस क, तो कहते क को बाहर निकालो स्क्वायर के बाहर, स्क्वायर में क्या है न प्लस वन, ख्याल में आती है,
देखो ऊपर जो आपने न लिखा है वो कहाँ से, कौन
भागाकार का भागाकार यहाँ था, अच्छा। अभी हम नीचे ही रखते, बाद में ऊपर ले जाएंगे, तीन द्वितीयों से भाग देते तो दो तृतीयों से गुणा हो जाता है, भागार का भागार गुणाकार होता है, इसलिए हमने न को ऊपर पहले भेजा, यानी अभी ये यहाँ न आया मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ तो क स्क्वायर लिखेंगे नीचे, अब ये न क प्लस क, क को बाहर निकालो कॉमन, ब्रैकेट में न प्लस वन रह जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाइड बाय न तो है ही,
न प्लस वन यानी संख्या प्लस वन,
हाँ यहाँ तक बात ख्याल में है, अभी ऊपर क क स्क्वायर है ना, क इंटू क है और नीचे ब्रैकेट में क इंटू न प्लस वन है, तो एक क इसके साथ चला गया, यहाँ तक बात ख्याल में, यानी अभी क्या हुआ, क डिवाइडेड बाय न प्लस वन इंटू न, उसी का अर्थ हुआ है, देखो यहाँ तक समझ में आई बात, एक क ऊपर क्या आया, क इंटू न डिवाइडेड बाय न प्लस वन, वो इंटू में ही है ना, ये दोनों के लिए डिनोमिनेटर है, इंटू ए प्लस होता तो इसका है क्या उसका है कहना पड़ता, यानी यहाँ इसका अर्थ क्या है, ये डिनोमिनेटर कहीं पर भी लिखो, क के नीचे लिखो या न के नीचे लिखो, ये क मल्टीप्लाइड बाय न डिवाइडेड बाय न प्लस वन, ये क से कितना कम है, हम अभी न के लिए वैल्यू डालते तो आपको समझ में आया ऐसा क्यों लिखा है, जो हमने अभी मालूम था वो वैल्यू डालो, दो तृतीयांश तीन तृतीयांश मालूम था हमको, उसका नवा भाग हमने किया था उसमें मिलाकर, अभी यहाँ हम तीन डालते हैं और तीन प्लस एक चार डालते हैं, तो ये होता हमारा उत्तर आया
माइनस में
नहीं, तीन चतुर्थांश का उत्तर आया।
अच्छा।
तीन चतुर्थांश का ही अर्थ क्या है, कम है वन वन फोर्थ कम, देखो इसका उत्तर मालूम है, एक क इंटू तीन चतुर्थांश, यानी तीन क चतुर्थांश हुआ ना, तीन चतुर्थांश क हुआ, तीन चतुर्थांश क का अर्थ क्या हुआ, उसको पूरा बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, उसमें वन फोर्थ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ उत्तर क्या आया था हमने, ऊपर न था और नीचे न प्लस वन था, यानी इंटू क था, क इंटू न डिवाइडेड बाय न प्लस वन, यानी क को किसी भी संख्या से गुणा करो और नीचे प्लस वन संख्या से भाग दो, तो पूरा क आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखो मान लेते हैं न के बदले हमने नौ डाला और नीचे दस डाला, वन टेंथ कम आ गया, ऐसे यहाँ न और नीचे न प्लस वन है, यानी वो क में कितना कम है,
अपने हिसाब से एक दशांश,
एक दशांश कम है, एक दशांश, यानी यहाँ पर इसके वैल्यू दस तो इसकी नौ थी, क डिवाइडेड बाय नौ प्लस वन, हाँ देखो हमने एक दशांश मिलाना पड़ेगा, एक दशांश क मिलाना पड़ेगा ऐसा कहा ना हमने, देखो यानी ये कितना है, क न डिवाइडेड बाय नौ प्लस एक, नौ प्लस एक है, इसको पूरा क बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उतनी उसमें ऐड करनी पड़ेगी, तो कितना ऐड करेंगे हम, क्योंकि देखो ये न प्लस वन इसका डिनोमिनेटर है, तो न प्लस वन वाला कोई ऐसा डिनोमिनेटर लेंगे हम, न प्लस वन ही रखना है यहाँ पर, उतना उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो कितना कम है उसमें उसका उत्तर आ जाएगा हमको, यहाँ क न है नौ प्लस वन है, अब उसको क बनाना है,
क माइनस क डिवाइडेड बाय नौ प्लस वन,
देखो हमारी भाषा में क के नी न के बदले नौ देखा था हमने, नौ क डिवाइडेड बाय दस, उसमें क्या ऐड करेंगे,
एक कर
तो हाँ तो ऊपर तो क लिखना, एक ही क लिखना ऊपर और नीचे दस लिखना, इतना ऐड करना पड़ेगा, तो हमके दस क और दस हो जाएंगे, यानी पूरा द क आएगा, यानी क उतना ही डिनोमिनेटर ऐड करना पड़ेगा, यानी क डिवाइडेड बाय नौ प्लस वन ऐड करेंगे क प्लस का नहीं कड़ी क इंटू ब्रैकेट नाइन न प्लस वन आ जाएगा ना। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे क न प्लस क, उसका अर्थ क्या है, क इन ब्रैकेट नाइन प्लस वन डिवाइडेड बाय नाइन प्लस वन, न प्लस वन, नाइन नहीं न प्लस वन, अभी क है ना, यानी इतना कम है ना उसमें, समझे कुछ। फिर से पहले स्टेप से लेते हैं,
नहीं इन्होंने यहाँ पर उदाहरण बीज गणित से जो दिया है,
हाँ
वहाँ क माइनस क डिवाइडेड बाय न प्लस वन दिया है,
हाँ उतने कम है ना उसमें, संख्या तो भागहीन संपूर्ण जीव राशि आती है, हम वो कितना कम है ये निकालने के लिए हमने उसको ऐड करके बताया था, उसमें कितना कम हुआ तो क डिवाइडेड बाय न प्लस वन कम हुआ, देखो हमने आपको बताया न की वैल्यू नौ लिया तो हमारा उत्तर क्या है, नौ दशांश क है, नौ दशांश क का अर्थ ही क्या है, क माइनस क दशांश, ऐसा है ना, न दशांश क की वैल्यू कितनी है, दसवें भाग से ही क माइनस क दशांश आया, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, इसमें कोई डिनोमिनेटर नहीं है, दस आ जाएगा ऊपर, दस आएगा, दस का माइनस का इज इक्वल टू नौ क भागीले दस, ऐसे यहाँ उन्होंने बताया क माइनस क डिवाइडेड बाय नाइन प्लस वन, न प्लस वन, नाइन प्लस वन, न प्लस वन, यानी वो लास्ट वाला कैसा निकाला ये जरा कंफ्यूजन है ना आपको,
अभी समझ में,
अभी समझ में, अब ये पूछ रहे हैं, यानी कोई भी संख्या के लिए यही बात हो जाती है, ये तो समझ में आई ना, बस न संख्या के लिए उन्होंने न कह दिया, अब कहते उत्कृष्ट संख्या तो भाग अधिक संपूर्ण जीव राशि का, जीव राशि में उत्कृष्ट संख्यात मिला दो, न के बदले क्या लिया, उत्कृष्ट संख्यात, संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर क्या आएगा, अभी न प्लस वन करना है, उत्कृष्ट संख्यात में एक मिला देंगे तो क्या आएगा, में एक मिला दो तो क्या आएगा, संख्या मन भूल गए,
संख्या आएगा,
जगन्य परिता संख्या आएगा, जगन्य परिता संख्या आएगा, एक ही संख्या मिलानी, तो वो क्या हुआ, क का जगन्य परिता संख्या अथवा भागहीन क आएगा उत्तर, क माइनस क का उसका इतना भाग से हीन आती है ना बात, देखो उत्कृष्ट संख्या अथवा भाग अधिक संपूर्ण जीव राशि का, संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर क्या आता है, तो जगन्य परिता संख्यात्वा भागहीन संपूर्ण जीव राशि आती है, उत्तर में क्या आएगा, जीव राशि माइनस जगन्य परिता संख्या, ये तो बात ख्याल में आ गई ऐसी है ना, अब फिर पूछते हैं असंख्यात्वा भाग अधिक संपूर्ण जीव राशि का, संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर क्या आता है, देखिए असंख्यात्वा भागहीन संपूर्ण जीव राशि आती है, उसमें प्लस वन करके हीन कहे तो वो तो असंख्यात्वा ही कहने में आएगा, यानी वो हमने क वर्ग डिवाइडेड बाय क प्लस क का असंख्यात्वा भाग ऐसा लिखेंगे हम, तो उत्तर क्या आ जाएगा, क माइनस क डिवाइडेड बाय असंख्यात्वा भाग प्लस वन, जैसे न लिखा था उसके बदले हम असंख्यात के साइन लिख सकते हैं। अभी किसी भी असंख्यात के लिए उसमें असंख्यात में एक मिला दो तो फिर भी असंख्यात भागी कहने में आएगा। हाँ, जब हम उत्कृष्ट असंख्यात के बाद हम उतना ऐड करके मिला के भाग देंगे तो जघन्य परितानंत को लेना पड़ेगा। यही बात पूछ रहे हैं। शंका, उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात्वा भाग, यानी असंख्यात का ही उत्कृष्ट भेद, उतने भाग से अधिक संपूर्ण जीव राशि का संपूर्ण जीव राशि के उपरिम वर्ग में भाग देने पर कौन सी राशि आती है? जघन्य परितानंतवा भागहीन संपूर्ण जीव राशि आती है, क्योंकि उत्कृष्ट असंख्यात संख्यात प्लस वन इज इक्वल टू जघन्य परितानंत। ये तो समझ में आवे ना, उन्होंने दो से तीन से चार से शुरू करते करते ये बातें बताई है। अब कहते हैं अनंतवा भाग अधिक संपूर्ण जीव राशि का, संपूर्ण जीव राशि के उपरिम वर्ग में भाग देने पर कौन सी राशि आती है? तो कहेंगे अनंतवा भागहीन संपूर्ण जीव राशि आती है, क्योंकि अनंत के लिए हम ख भी कहेंगे तो क स्क्वायर डिवाइडेड बाय क प्लस ख क्या आएगा? क माइनस क डिवाइडेड बाय ख प्लस वन आएगा ना, यानी अनंतवा भाग से हीन क आएगा उत्तर। यहाँ अनंतवा भाग अधिक किया तो वहां अनंतवा भाग हीन हो जाता है। सर्वत्र कारण का कथन पहले के समान करना चाहिए। अब यहां पर उपयुक्त गाथाएं दी जाती है। गाथा 24, 25, 26 जो है एक एक को हम पढ़ेंगे। चौबीस का पहले ऊपर पढ़ेंगे फिर उसका अर्थ देखेंगे। अवहार वड्डिरुवा णवहारा दोहुलद्ध अवहारो रुवहियो हाणीये हो दियु वड्डिये विवरी दो। भागहार में उसी के वृद्धि रूप अंश के रहने पर भागहार यानी जो क है हमारा उसी का वृद्धि रूप अंश है, उसका हमने दूसरा भाग उसमें मिला दिया, उसी का दूसरा भाग मिला दिया, उसी के वृद्धि रूप अंश के रहने पर भाग देने से जो लब्ध आता है, लब्ध भागार यानी हर आता है, यानी उसका जो लब्ध आता है वह हानि में रूपाधिक और वृद्धि में इससे विपरीत अर्थात एक कम होता है। क्या कहना चाहते हैं? भागहार में वृद्धि रूप अंश के रहने पर भागहार में हमने क में क का नौवा भाग मिला दिया, न माना था ना, जैसे हमने नौवा भाग कहे मिलाकर अगर उसका भाग देते हैं तो भागहार लब्ध में क्या होता है? हानि में रूपाधिक यानी क माइनस क का दसवा भाग कहेंगे, रूपाधिक एक से अधिक, क में उसका एक से अधिक वा भाग करके उसको हीन कर दो, और वृद्धि में इससे विपरीत अर्थात एक कम होता है। यहां हमने एक अंश मिलाकर उसका भाग दिया, अगर उसमें से उसका घटाकर भाग देते तो वहां अधिक हो जाता। ये तो वही बात है ना, देखो देखो अभी हमने क्या पढ़ा, क स्क्वायर डिवाइडेड बाय क में उसका दूसरा भाग से भाग दिया तो उसका उत्तर क्या है? ये दूसरा भाग है ना, तो तीसरा भाग करना, तीसरे भाग से कम क आएगा। अब मान लेते हैं अभी ये इसको इधर और इधर कर सकते हैं कि नहीं, कोई भी संख्या का भागहार देखो, हमने 100 को 20 से भाग दिया तो क्या संख्या आएगी? 5 आएगी। हम इसको इधर रख सकते हैं कि नहीं, 100 को 5 का भाग देते तो 20 आता है, क्योंकि सौ की संख्या 20 × 5 है, तो उसको एक को भाजक बनाओ तो दूसरा लब्ध आता है। अभी हमने क्या किया, हमने अधिक करके भाग दिया था, क स्क्वायर में क अधिक क का दूसरा भाग से भाग दिया था, तो संख्या क में तीसरा भाग कम आया था। अभी इसका बदले करो ना, क के तीसरे भाग से हीन से भाग देंगे तो दूसरा भाग अधिक उत्तर आएगा। एक ही गाथा में उन्होंने दोनों प्रकार से बता दिया। यहाँ देखो अभी उन्होंने उदाहरण दिया, नीचे एक नंबर और दो नंबर, एक वृद्धि करके भाग दिया तो क्या होता है, हानि करके भाग दिया तो क्या होता है। क स्क्वायर को क प्लस क डिवाइडेड बाय न से भाग दिया तो उत्तर क्या आया, क माइनस क डिवाइडेड बाय न प्लस वन, यानी उसमें जितनी वृद्धि जितने वह भाग से वृद्धि थी उतने वह भाग में एक बढ़ाकर उसकी हानि कर दो। ये समझ में, जो अभी तक हम देख रहे थे। अब आगे दो नंबर पर क्या लिखा थे, लिखते हैं क स्क्वायर को क माइनस क का न वा भाग, यानी क डिवाइडेड बाय 9 न, तो उत्तर क्या होगा, बढ़कर आएगा। भागहार घटा दिया तो उत्तर में बढ़ गए, क प्लस क डिवाइडेड बाय न माइनस 1 आ जाता है। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर देखा था उल्टा सुलटा किया ना, अब यहाँ हम माइनस करके भाग देते हैं, क के तीसरे भाग से हीन क का भाग देते हैं तो क के दूसरे भाग से अधिक ये हो जाएगा। अभी तक हमने उसको क के विजन में 3 से अधिक करके भाग देते थे, वहां चौथा भाग हीन हो जाता था। अब उल्टा करना है, अंक गणित से एक को एक प्लस आधा यानी डेढ़ भाग दो तो दो तृतीयांश आ जाएगा। दो तृतीयांश का ही अर्थ क्या है, एक में 1/3 कम है। अब दूसरे में एक को एक माइनस 1/3, वहां प्लस है ना उसको माइनस करो, वहां गलत हुआ है प्लस साइन ब्रह्मा। देखो उदाहरण पहले एक दो लिखे ना, हाँ। अंकगणित से लिखा, अंकगणित में एक आंकड़ा है, हाँ। वहाँ 1 + 1/(1 + 1/2) इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 1 - 1/3, ये बराबर है। हाँ। अभी दूसरा पॉइंट, 1 / क्या लिखा है वहाँ पर, वो 1+ नहीं चाहिए, 1- चाहिए, क्योंकि वहाँ माइनस की बात सबको समझा रहे, 1 - 1/3 से भाग देंगे। 1 - 1/3 यानी 2/3 से भाग दिया तो 3/3 उत्तर आया, उसका अर्थ एक में 1/3 बढ़ गया। ये समझ में आई बात, अब आगे बढ़ेंगे 25 नंबर को देखेंगे। अब अवहार विशेषेण छिन्नवहारा दुर्लब्ध रुवाजे रुवाहियाउणावीय अवहारा हानिवर्धिनम्। अभी उसका अर्थ देखते हैं, भागहार विशेष से भागहार को छिन्न अर्थात भाजित करने पर जो संख्या लब्ध आती है उसे रूपाधिक अथवा रूप न्यून कर देने पर वह क्रम से हानि और वृद्धि में भागहार होता है। देखो क्या कहना चाहते हैं, भागहार विशेष से भागहार को छिन्न अर्थात भाजित करने पर जो संख्या लब्ध आती है।
दोनों गाथा एक साथ ली उन्होंने?
हाँ, दोनों एक साथ लेनी पड़ेगी,
क्योंकि उदाहरण लास्ट लाइन में लिखा है 25-26 के बीच।
25-26 के, हाँ 26 को भी पढ़ लेते। लद्ध विशेष छिन्नम लद्धम रुवाहि ऊणयम चावि अवहारहाणि वट्टी नवहारो सो मुने यो। लब्ध विशेष से लब्ध को छिन्न अर्थात भाजित करने पर जो संख्या उत्पन्न हो उसे एक अधिक अथवा एक कम कर देने पर वे दोनों क्रम से भागहार की हानि और वृद्धि के भागहार होते हैं। देखो इसको हम समझेंगे उदाहरण के द्वारा। गाथा 25-26 के बीज गणित से पहले समझा रहे हैं कि क डिवाइडेड बाय ब इज इक्वल टू प और क डिवाइडेड बाय स इज इक्वल टू म। तो वहां उन्होंने क्या भागा पहले में 25 में क्या बताया था? भागहार विशेष से भागहार को छिन्न करने पर जो संख्या लब्ध आती है यानी मान लेते क की संख्या कैसी आई? म डिवाइडेड बाय दो से आई, यानी म डिवाइडेड बाय दो इज इक्वल टू क आया। तो भागहार में विशेष अगर विशेष हम करेंगे कुछ ऐड करेंगे तो आने वाली संख्या भी कुछ विशेष हो जाएगी। देखो भागहार विशेष से भागहार को छिन्न अर्थात भाजित करने पर जो संख्या लब्ध आती है उसे रूपाधिक अथवा रूप न्यून कर देने पर वह क्रम से हानि और वृद्धि में भागहार होता है। उसके लिए बताया यहाँ क डिवाइडेड बाय ब इज इक्वल टू प और क डिवाइडेड बाय स इज इक्वल टू म, यानी भागहार बदल दिया उन्होंने, ब के बदले स किया तो उत्तर अलग आ गया।
हमने पहले लिखा था क 36 गिनाया था,
हाँ
ब को 9 तो उत्तर आया प 4 और उसके आगे क 36 स 6 डिवाइडेड बाय स 6
आया,
हाँ। तो उत्तर म यानी 6 आया,
यानी 36 को 4 से भाग देते तो 9 आते और 36 को 6 से भाग दिया तो 6 आ गए।
अरे ब को हम 9 लिखा है तो उत्तर 4 आया।
ब को 9 लिखा है,
हाँ क इज इक्वल टू 36 ब इज इक्वल टू 9 प इज इक्वल टू 4।
अच्छा ऐसा वहाँ लिखा है, मैंने आगे का पेज पढ़ा, 47 पेज पढ़ा मैंने। अच्छा। उसमें ऐड कर वृद्धि की बात पढ़ी, यानी यहाँ आपने यहाँ पर ओरिजिनल में को 36 लिया है ना,
आपने यानी आपने बताया,
हाँ, और ब को हमने
9
9 माना,
ब इज इक्वल टू 4
तो 4 आ गए। अभी क 36 को ही
स यानी 6
स 6 से भाग दिया
तो म यानी
म 6 आ गया।
अभी यही इसी को आगे बुद्धि की बात बताई है तो क
यानी क डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू प क डिवाइडेड बाय स इज इक्वल टू म, यह संख्या आ गई। अब वृद्धि की बात कर रहे हैं, यानी भागार विषय से भागार को छिन्न करने पर जो संख्या लब्ध आती है, कौन सी लब्ध आई? 4 लब्ध आई हमारी, प आए ना, तो प में कुछ और दूसरा मिला दिया म मिला दिया, यानी क डिवाइडेड बाय ये क डिवाइडेड बाय प करते तो ब आता, परंतु कम क को क्या भाग दिया, प प्लस कुछ लब्ध विशेष से इन्हें रूपांतरित किया, रूपन न्यून कर देने पर क्रम से हानि और वृद्धि में भागार होता है। यानी उसी का उदाहरण हमने वहां ऐसा भी लिखा था, देखो क तो 36 है, 36 को 9 से भाग देने पर 4 आया था, है ना। और यहाँ प और म की वैल्यू कितनी थी, प की वैल्यू 4 थी और म की वैल्यू 6 थी। हाँ, तो हमने 4 और 6 और 4 मिला दिया, 10 आ गए। तो 10 आए तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो पहले में पहले क्या था, 36 को 4 से भाग दिया तो 9 आए थे। अब 36 को 6 प्लस 4 से भाग दिया तो उत्तर में क्या आएगा, 9 डिवाइडेड बाय 9 का छठा भाग प्लस 1 और माइनस 1, ऐसा प्लस 1 माइनस 1। देखो उसको मैं बताती हूँ, अभी पहले हमने करके रखा है सब, 47 पेज पर पढ़ रही हूँ, वृद्धि का पढ़ रही हूँ। देखो क डिवाइडेड बाय पहले क्या क्या वैल्यू आई थी, क को ब से डिवाइड करने पर प आया था, क को स डिवाइड करने पर म आया था। अभी हमने क्या किया, ये दो लब्ध है ना प और म, उसको मिलाकर हमने क का भाग दिया। उत्तर में क्या आया, यानी वो उसने सॉल्व करके बताया, क डिवाइडेड बाय प प्लस म किया है। तो म की वैल्यू कैसी आई थी, नहीं यहाँ पर म कैसे है, क डिवाइडेड बाय स था ना, म की वैल्यू क डिवाइडेड बाय स थी, यानी वो प ब्रैकेट के बाहर निकाला उन्होंने और प्लस म के बदले वो गुणकार के रूप में उन्होंने लिखा। प प्लस म को उन्होंने कैसे लिखा, देखो
प डिवाइड म डिवाइडेड बाय प,
नहीं उन्होंने ऐसा किया प म डिवाइडेड बाय प किया, म को प म डिवाइडेड बाय प किया और प को ब्रैकेट के बाहर निकालकर 1 प्लस म डिवाइडेड बाय प किया। समझ में आता है,
यहाँ लिखा हुआ पड़ा है, समझ में नहीं आ रहा।
उन्होंने डायरेक्ट उत्तर कैसे निकाला है, वृद्धि में फिर पढ़ते, भागहार विशेष से भागहार को छिन्न कर अर्थात भाजित करने पर जो संख्या लब्ध आती है, हमारी कौन सी संख्या आई, प या म, ये लब्ध संख्या आई, उसे रूपाधिक अथवा रूप न्यून कर देने पर, यानी उसमें एक प्लस या एक माइनस कर देने पर वह क्रम से हानि और वृद्धि में भागहार होता है। यानी उन्होंने डायरेक्ट
ऐसा है ना, रूपाधिक करने से यानी भागहार बढ़ाया तो उसका लब्ध छोटा आएगा और माइनस करेंगे न्यून करेंगे तो उसकी वृद्धि होगी।
केवल इतना नहीं है ना,
तो ये पहले वृद्धि का उन्होंने पेज 47 पर वृद्धि का गणित दिखाया और उसके नीचे हानि का गणित,
क्रम से हानि और वृद्धि में भागहार होता है
ना, प प्लस म और नीचे प माइनस म हानि कर दिया ऊपर, तो उसका उत्तर बड़ा आएगा ऐसा।
हाँ वही तो, क को प में कुछ मिला कर अगर हम भाग देते हैं, प देखो क डिवाइडेड बाय ब इज इक्वल टू प आया था और क डिवाइडेड बाय स इज इक्वल टू म आया था, यानी भागहार विषय से भागहार को किया तो जो संख्या लब्ध आई, जो लब्ध संख्या में अगर हम कुछ मिला के भाग देते हैं
यानी परस मोर ऐसा यहाँ बताया,
हाँ
तो उसका उत्तर आएगा हानि में,
हानि और वृद्धि में भागार होता है। रूपाधिक करेंगे तो हानि में भागार होगा,
न्यून करेंगे तो
यानी प प्लस वन से भाग देंगे तो ब माइनस, अंकगणित से देखो ना, देखो अंकगणित से उन्होंने समझाया, 36 को 9 से भाग दिया तो 4 आए थे, 36 को 6 से भाग दिया तो 6 आए थे, अभी छिन्न अवहार है क्या,
भागार को भागार से भाग देना,
छिन्न ने भागार डिवाइडेड बाय भागार, उसको छिन्न अवहार कहते हैं। एक भागार है 9, एक भागार है 6, समझ में आती बात, वो तो छिन्न हवा आगे वाला है ना, छिन्न अवहार प्लस एक किया, यानी छिन्न अवहार कैसे, 9 डिवाइडेड बाय 6, यानी पहले भागार से दूसरे भागार को भाग दिया तो छिन्न अवहार हुआ, वो उसमें एक मिला दिया, यानी 9 षष्ठांश यानी कितना हुआ,
3 द्वितीयांश,
हाँ 3 त्रिक 9 3 दुनी 7 3 द्वितीयांश प्लस 1 इक्वल टू 5 द्वितीयांश आ गए ना। अब ये जो आया ना छिन्न अवहार जो आया उसमें एक मिलाया, देखो भागार विषय से भागार को छिन्न अर्थात भाजित करने पर जो संख्या लब्ध आती है, अच्छा यानी भागार को भागार से भाग देने पर जो संख्या आती है उसमें एक अधिक मिला दो, यानी 5 द्वितीयांश कर दो, उसे रूपाधिक अथवा रूपन्यून कर देने पर वह क्रम से हानि और वृद्धि में भागार होता है। अब उससे अगर हम 9 को भाग देते हैं तो 18 पंचमांश हानि रूप अवहार हुआ, यानी 36 को 18 पंचमांश से भाग देते तो 10 वृद्धि रूप लब्ध आ जाएगा। यानी एक ही संख्या ली 36, उसको एक भाग हार दिया तो 4 आए, दूसरा भाग हार 6 से भाग दिया तो 6 आए, एक भागार को दूसरे 9 को 6 से भाग दिया तो छिन्न अवहार कहते हैं, उसमें एक मिलाकर उसका अगर भाग देते हैं 9 को, एक मिलाकर उसको भागार को भाग देते हैं तो हानि रूप अवहार आ गया, यानी वो भागार का भागार, उससे मूल संख्या को भाग देते हैं तो 10 वृद्धि रूप लब्ध आया। और हानि में 3 द्वितीयांश है, उसमें एक माइनस किया तो एक द्वितीयांश आए, तो 9 को हमने एक द्वितीयांश किया तो 18 आए, 36 को 18 से भाग दिया तो 2 आते हैं, वो हानि रूप लब्ध ने 6 माइनस 4 हानि रूप लब्ध आया। हमने पहले कुछ लिख के रखा है तो पढ़ती हूँ,
मेरा पुस्तक जो उसमें पूरा लिखा है,
उदाहरण हमने दूसरा लिया था 48 वाला, वहां पर पहली बार जो लिखा था, मैं पढ़ती हूँ, उदाहरण लिया हमने 48 डिवाइडेड बाय 12, 4 आए, 48 को 8 से भाग दिया तो 6 आए, यानी उन्होंने वो क प और ब में जो समझाया है ना, तो भाजक क है हमारा, जिसको भाग देना है वो क है, पेज नंबर 46 नीचे की लाइन, भाजक क है, दो भागहार है, एक ब भी है एक स भी है, और लब्ध भी दो अलग अलग है, ब से भाग देते तो प आता है और स से भाग देते तो म आता है। तो करना भाज्य जो क है उसको प प्लस म से भाग देना, 6 और 4 मिला के भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, भागहार ब डिवाइडेड बाय 1 प्लस छिन्न आहार आता है। मैंने छिन्न आहार में एक मिला दो, भागहार ब डिवाइडेड बाय 1 प्लस छिन्न आहार आता है, मैंने 1 प्लस ब डिवाइडेड बाय तो आता है। और भाज्य क को म माइनस प करके कर दो तो भागहार क्या आएगा, ब डिवाइडेड बाय क एक माइनस छिन्न आहार ब डिवाइडेड बाय सो आएगा। उसके लिए उन्होंने जैसे 36 वाला उदाहरण लिया है वैसे हमने दूसरा एक उदाहरण लिया था। देखो हमारा भाज्य है 48 और उसका एक भागहार है 12, उत्तर आता है 4। 48 को 8 ये दूसरा भाग है तो उत्तर आता है 6, यानी हम प और म के बदले में हमने 4 और 6 लिए। 48 को 4 प्लस 10 से भाग देंगे तो उत्तर आता है हमारा, क्या करना है, उन्होंने डायरेक्ट उन्होंने सूत्र बताया ना, तो सूत्र में कैसा लिखा उन्होंने, प प्लस म किया और उससे भाग दिया तो उत्तर में क्या आया 12, यानी भागहार ब था ना, पहले भागहार 12 था तो 12 डिवाइडेड बाय, देखो ऊपर हमने क्या लिखा था, ब डिवाइडेड बाय 1 प्लस छिन्न आवार, तो 12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस छिन्न आवार, यानी भागहार को भागहार से भाग दो, 12 डिवाइडेड बाय 8। उसको हमने सॉल्व किया, 12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/5, यानी 12 डिवाइडेड बाय 5/5 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 इज इक्वल टू 24/5, 48/10 इज इक्वल टू 24/5। बात सही है ना, फिर से देखते हैं।
आपके उदाहरण पे मत समझाना, पुस्तक में जो दिए वो समझाओ।
पुस्तक में समझाएंगे, पुस्तक में हमने 36 और 9 देखा है, एक 36 को 9 से भाग दिया 4 आए, 36 को 6 से भाग दिया 6 आए, तो छिन्न आहार क्या है, तो एक भागहार को दूसरे भागहार से भाग दो, तो एक भागहार है 9, दूसरा भागहार है 6, 9 डिवाइडेड बाय 6 तो उसका उत्तर आता है
डेढ़,
हाँ 3/5, यानी ये हमारा डेटा है 3/5। अब उसमें क्या करते हैं, नहीं नहीं वो तो छिन्न आहार कितना आया तो 3/5, यहाँ तक बात ख्याल में। अब हम कहेंगे दोनों भागहारों से टोटल करके अगर हम भाग देते हैं 36 को, एक भागहार एक लब्ध आया था 4, दूसरा लब्ध आया था 6,
प्लस म,
हाँ क को प प्लस म से भाग देते हैं, यानी 36 को 6 प्लस 4 से भाग देते हैं तो उत्तर क्या आएगा, तो जो पहला लब्ध था कौन सा था, ब था ना, पहला भागार क्या था, क भागीले प इज इक्वल टू क भागीले ब इज इक्वल टू प था, फिर से क डिवाइडेड ब इज इक्वल टू प, क डिवाइडेड बाय स इज इक्वल टू म, यहां तक बात क्या है। अब हमको क्या करना है, क को प प्लस म से भाग देना है,
आगे की स्टेप नहीं समझ,
हाँ तो उसको डायरेक्ट कैसा उत्तर आता है वो पहले बता रहे, वो स्टेप छोड़ दो। तो क को प प्लस म से भाग देंगे तो क्या आएगा, उसका ओरिजिनल प कैसे निकाला, तो क को ब से डिवाइड करने पर प आया था बराबर, तो अभी क डिवाइडेड बाय प प्लस म क्या आता है, तो प की वैल्यू वो ब से आई थी ना, प तो ब डिवाइडेड बाय, हाँ ब डिवाइडेड बाय वन प्लस ब डिवाइडेड बाय सर,
ये पैसा निकालना समझ नहीं आया,
वो भी बताते हैं।
वन प्लस म डिवाइडेड बाय प जो लिखा है वो ब्रैकेट में लिख के उसको प से गुना किया है,
वो तो बताती हूँ। पहले तो वैल्यू में ही समझो, अंक गणित में समझो, 36 डिवाइडेड बाय 4, 4 ने बो इज इक्वल टू नौ ने प आए थे, 36 डिवाइडेड बाय 6 ने स इज इक्वल टू म ने उसकी भी वैल्यू 6 ही आई थी। अब उसके 9 और 6 ये भाग हमारे लब्ध है और भागार की वैल्यू 4 और 6 है, बराबर है ना। तो क यानी 36 डिवाइडेड बाय प प्लस म, पहला लब्ध आया था, दूसरा लब्ध 4 आया था, प की वैल्यू 4 थी, म की वैल्यू 6 थी, 4 और 6 को हमने मिला दिया। ये ऊपर जो हमने लिखा है ना 36 भागीले 4 इज इक्वल टू 9 लिखा है ना, 36 भागीले 9 इज इक्वल टू 4 लिखना था।
कहाँ पर?
नहीं नहीं मैंने कुछ लिखने में घोटाला किया है। 36 भागीले 9 इज इक्वल टू 4 आपके पास लिखा हुआ है ना, क डिवाइडेड बाय ब उसमें क्या लिखा है इधर, दोनों मैंने इधर लिखा है, आपने उधर लिखा है,
हमने सब जगह लिखा है।
देखो पेज नंबर 46 पुस्तक का नीचे की लाइन, क डिवाइडेड बाय ब इज इक्वल टू प, वहाँ वैल्यू क्या लिखी है, 36 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 4,
और आगे 36 डिवाइडेड बाय
6 इज इक्वल टू 6। अभी उसकी क्या है, क डिवाइडेड बाय प प्लस म, अब प की वैल्यू 4 है, म की वैल्यू 6 है, तो 36 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 करना, तो उसका उत्तर क्या आएगा, तो पहला ब था ना यहाँ नीचे, ब डिवाइडेड बाय ब डिवाइडेड बाय स प्लस 1, ये दोनों छः छः संख्या आएगी, इसलिए
स्टेप इसमें है ही नहीं, आप कहाँ से निकाल रहे हो, समझ नहीं आ,
डायरेक्ट उत्तर बता रहे, डायरेक्ट उत्तर राइट में है, वहाँ उसके हमने वैल्यू ऐड किए, ब डिवाइडेड बाय 1 प्लस ब डिवाइडेड बाय सो,
ये आप फोर्थ स्टेप जो है वो बता, पर हमको सेकंड स्टेप समझ में नहीं आ रही,
अभी हम सेकंड स्टेप डिराइव करेंगे, क डिवाइडेड बाय प प्लस म है ना, अभी वहाँ हम उसकी वैल्यू डालेंगे। देखो क डिवाइडेड बाय प प्लस म, अभी इन्होंने क्या किया है, म प और डिवाइडेड बाय प किया, म प डिवाइडेड बाय प, ये आगे की वैल्यू कैसे निकाली है मैं बता रही हूँ आपको, ये आगे क्या उन्होंने कैसा निकाला उसको मैं, प और म ऐसा है, यहाँ तक समझ में आई, ये तो ऑर्डिनरी है। अब उन्होंने जो आगे एक स्टेप बताई ना पुस्तक में 47 पेज पर, प को ब्रैकेट के बाहर निकाला और ब्रैकेट में 1 प्लस म डिवाइड बाय प किया, वो कैसे आया, तो उसके लिए मैं एक बीच की स्टेप उन्होंने क्या किया होगा वो बता रही हूँ। प प्लस म ये तो सरल है, अब म की वैल्यू म रखते हुए म की वैल्यू म रखते हुए, क्योंकि आगे उन्होंने म डिवाइडेड बाय प निकाला है ना, वो कैसे आई होगी? तो देखो म के मल्टीप्लीकेशन में प लिखो और डिवाइडेड बाय प लिखो, अभी इसी को सॉल्व करना है। तो प हमने कॉमन फैक्टर बाहर निकाला, तो ब्रैकेट में क्या लिख रहेगा, 1 प्लस म डिवाइडेड बाय प। ये समझ में आया, क्योंकि उन्होंने आगे निकाला, इसलिए उन्होंने वो म और प के म और प वहाँ डाला है ना, म डिवाइडेड बाय प निकाला है, वो कैसे निकाला होगा ये इसलिए मैं अंदाजा आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उनको ये वो म और प के भाषा में सारा समझाना था, इसलिए उन्होंने तो डायरेक्ट उत्तर बता दिया, मैं उत्तर कैसा डिराइव उन्होंने किया है उसको मैं बता रही हूँ। ये बीच वाली स्टेप उन्होंने ये की, क डिवाइडेड बाय केवल म और प और म था, तो म को मल्टीप्लीकेशन में प किया और डिवाइडेड बाय प किया, वैल्यू उतनी म की म ही रही, क्योंकि इसको रूल आउट कर सकते हम। ये क्यों किया, क्योंकि वो 1 प्लस म डिवाइडेड बाय प उनको निकालना था इसलिए। इन्होंने यहाँ पर क्या किया, क डिवाइडेड बाय प प्लस म प डिवाइडेड बाय प किया और उसके बाद ये वैल्यू आ गई। ख्याल में आई बात, बीच में एक स्टेप ये डालना वहां पर,
वो डाले पर ये कैसा है ये नहीं समझे, ये तो आपने बताया वो समझ में आया।
ये यहाँ तक बात में ख्याल में। अब कोई भी संख्या है उसमें जो कॉमन होता है
उसको बाहर निकाल लो,
उसको बाहर, जैसे अब ये नीचे का प छोड़ दो, प प्लस चार प होते तो क्या करते हम, प को बाहर निकालते और अंदर प एक प प्लस चार ऐसा लिखते, प को कॉमन हमने बाहर निकाला। ऐसे यहाँ पर क्या किया, प प्लस म प डिवाइडेड बाय प था, तो इसको बाहर निकालना करती हूँ, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो प बाहर निकाला तो प को प से भाग दिया तो क्या आया, एक आया, केवल एक आया, प्लस इसको भी प से भाग देना है, तो भाग देना है तो क्या आएगा, ऊपर म आएगा और नीचे प से भाग दिया तो ये प और प गया, यहाँ म रहेगा और नीचे प रहेगा। ये ख्याल में आया। देखो हमने क्या किया, इसको गुणाकार में रखना है ना, तो यहाँ जो सब संख्या थी म प डिवाइडेड बाय प, इसको प से भाग दिया तो एक आया, इसको प से भाग दिया तो एक, सॉरी एक प चला गया, भाग दिया ना, और म डिवाइडेड बाय एक प बाहर रह गया, तो 1 प्लस म डिवाइडेड बाय प रह गया। यहाँ तक ख्याल में। ये सेकंड स्टेप जो पुस्तक में लिखी है, क डिवाइडेड बाय प इन ब्रैकेट 1 प्लस म डिवाइडेड बाय प। अब म की वैल्यू क्या है अपने ओरिजिनल सूत्र में देखो, 46 पेज पर म की वैल्यू क डिवाइडेड बाय 100 है और प की वैल्यू क डिवाइडेड बाय ब है। देखो अब ये म डिवाइडेड बाय प है ना, अब उसको हमको वहां उसकी वैल्यू रखनी है, प इन ब्रैकेट 1 प्लस म डिवाइडेड बाय प है। अब म की वैल्यू 46 पेज पर देखो, म इज इक्वल टू क बाय 100 है, नहीं हम ये क और म में ही डालेंगे, यानी अभी हमको कैसे लिखना है, हमारे पास है क डिवाइडेड बाय प इन ब्रैकेट 1 प्लस म डिवाइडेड बाय प, बराबर। अब 1 प्लस क्या करना है, म की वैल्यू कितनी है, को डिवाइडेड बाय सो, को डिवाइडेड बाय सो इसकी वैल्यू है, और डिवाइडेड बाय क्या है, पो की वैल्यू कितनी है, को डिवाइडेड बाय बो, थोड़ा गणित का प्रकरण है
ये तो सेकंड स्टेज,
ये ब्रैकेट, ये म डिवाइडेड बाय प की वैल्यू, केवल म बाय डिवाइडेड की प की वैल्यू क्या है, म की वैल्यू क डिवाइडेड बाय स, डिवाइडेड बाय क डिवाइडेड बाय ब। अभी डिवाइडेड बाय कर तो उल्टा करके गुणा करो, तो ब ऊपर जाएगा क नीचे आएगा, क क चला जाएगा, ब डिवाइडेड बाय स आएगा। वहां आगे क्या लिखा है देखो, वही लिखा है ना, वो जो था ना ब्रैकेट के बाहर वो ऊपर ले गए और उसके नीचे डिवाइडर में लिखा वन प्लस ब डिवाइडेड बाय सो, ये ब डिवाइडेड बाय सो ऐसा आया इज इक्वल टू, वहां फिर भी पो की वैल्यू डाली, क डिवाइडेड बाय ब, यानी क डिवाइडेड बाय क डिवाइडेड बाय ब आया, ऊपर जो प की वैल्यू फिर से डाली वहां पर, तो क का चला जाएगा और डिवीजन की डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में आएगी, वो ब ऊपर आया, ख्याल में ना, ये प की वैल्यू कितनी थी, यानी क डिवाइडेड बाय क डिवाइडेड बाय ब था, इज इक्वल टू क को गए और ब आया ऊपर, तो ऊपर ब आ गया, तो फाइनल रिजल्ट क्या है, ऊपर ब आया और नीचे डिनोमिनेटर वन प्लस ब डिवाइडेड बाय सो आया, यानी उन्होंने क्या किया है, देखो अभी हम फिर उन्हीं की अंकगणित की भाषा देखते हैं। 36 ये हमारा भाज्य है जिसको हम भाग देते हैं, डिनोमिनेटर नहीं, डिनोमिनेटर नहीं, इसको क्या कहेंगे,
डिवाइडेड बाय
9 इज इक्वल टू 4, यही संख्या 36 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 6, ये हमारा एक लब्ध है, ये दूसरा लब्ध है। ये प्रश्न ऐसा पूछ रहे हैं कि 36 को 4 और 6 से मिलाकर भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा, उसको कहते हैं ये ब यानी 9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ब डिवाइडेड बाय 100 है ना, तो वहां 1 प्लस ब यानी 9 था,
9 डिवाइडेड बाय 6
डिवाइडेड बाय 100 यानी
6 यानी
3/5 3/5 प्लस 1/5 5/5 हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 5/5 यानी 2/5 हो जाएंगे, यहाँ 5 रह जाएगा नीचे, यानी 36 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 5 ये कह रहे हैं। ये इसलिए क्या, ये तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, परंतु ये बड़ी बड़ी संख्याओं या असंख्यात या अनंतों में क्या फॉर्मूला लगाना उसके लिए बता रहे, वही एक ही भाजक है जिस एक ही जो भाज्य है भाज्य राशि उसको अलग अलग दो भागारों से भाग दिया तो जो लब्ध आया उस लब्ध की लब्ध को मिलाकर अगर भाग देते हैं तो क्या होगा, जो प्रथम भागार राशि थी डिवाइडेड बाय वन प्लस इसको इससे भाग देना और दूसरी आएगी अगर ये, तो हमने इसको ऐड करके भाग दिया, अब 4 माइनस 6 माइनस 4 से भी भाग सकते हैं, इसको 6 प्लस 4 से भाग दिया तो हमने देखा क्या आया, यानी 6 प्लस 4 से भाग देते हैं, देखो 36 को छः प्लस चार, ये दो भाग दो लब्ध राशि का मिलाकर भाग देते हैं, तो यहाँ जो भागहार थे ना, तो भागहार डिवाइडेड बाय वन प्लस ये भागहार डिवाइडेड बाय भागहार, जिसको छिन्न भागहार कहा था, छिन्न अवहार कहा था, इसको छिन्न अवहार कहते हैं। छिन्न अवहार में एक मिला दो। हाँ, और अभी अभी उसको माइनस करते हैं, माइनस करके उसका भाग देते हैं, तो उसमें से अभी वो दूसरी राशि लेना, छिन्न अवहार के भागहार से उसमें से माइनस कर दो। यही बात आगे लिखी, हानि के लिए क्या लिखा है देखो, ऊपर क डिवाइडेड प प्लस म था, अभी वो बीच वाले स्टेप छोड़ दो, तो क अभी हानि में क्या लिया, क डिवाइडेड बाय प माइनस म लिया, उसका उत्तर क्या लिया वहां पर डायरेक्ट सो, अभी दूसरा भागहार लिया, बड़ा वाला भागहार लिया, डिवाइडेड बाय स डिवाइडेड बाय ब माइनस वन, वहां ब डिवाइडेड बाय स किया था और प्लस वन किया था, यहाँ स डिवाइडेड बाय ब करके माइनस वन किया, यानी अपनी भाषा में वहां क्या किया था हमने, छः और चार का ऐड करके हमने 36 को भाग दिया था, तो यहाँ का भागहार लिया डिवाइडेड बाय वन प्लस नौ बाय छः लिया था, अब उसमें हम माइनस करेंगे, 36 डिवाइडेड बाय छः माइनस चार किए हमने, पहले इसमें ये मिलाए थे, अभी इसमें से ये माइनस किया, तो उत्तर क्या आना चाहिए, यहाँ नौ लिया था वहां भी वो, यहाँ ये वाला भागहार लिया था, अब इसमें से ये माइनस किया है, तो यहाँ ये वाला भागहार लेना, छः डिवाइडेड बाय स डिवाइडेड बाय ब माइनस वन, स डिवाइडेड बाय ब, छः डिवाइडेड बाय नौ माइनस वन, वन माइन वन में से वो माइनस करना पड़ेगा, वन माइनस वो करना पड़ेगा, छः डिवाइडेड बाय नौ, वन माइनस छः डिवाइडेड बाय नौ, वन माइनस छः डिवाइडेड बाय नौ कितने आते हैं, यानी दो तृतीयांश हो गए ना, एक में से दो तृतीयांश किए तो एक तृतीयांश रह गए, वन थर्ड रह गए, वन थर्ड रह गए नहीं, वो तीन ऊपर चला जाएगा, सैंतीस अठारह अच्छा आएगी ना, ये टोटल आ जाएगा, दो से छत्तीस से भाग देगा तो अठारह आते हैं, वही उत्तर आएगा, ये गणित चला था आपने, ये समझ में ही बात, यहाँ तक हो गए, समय हो गया, चलो बाकी कल बात, कल इसको फिर दोबारा ले लें, जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनं सदा